Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Mandakopanishad, presented by Swami Sri Akhandanandagiriji Maharaj. Thank you. Om Namah Shivaya.
Om Tat Sat. Tau Tattvam Najanami. Kidrashosi Maheshwarah. यादृशोऽसि महादेव तादृशाय नमो नमः यो असौ सोऽहं यजाम ॐ शान्ति मुंडक उपनिषद अथर्ववेद से संबंधित और ब्रह्म विद्या का प्रतिपादक, ब्रह्म विद्या सर्वविद्याम प्रतिष्ठा, समस्त विद्याओं से जो सर्वश्रेष्ठ है, इस विद्या को अन्य विद्याओं की भांति पढ़कर या सुनकर या मनन करके भी समझ पाना कठिन है, क्योंकि इस विद्या का संबंध समझ से नहीं है, इसका संबंध अनुभव से है। आधारभूत बात और सिद्धांत अन्य विद्याओं में और इस विद्या में यही एकमात्र अंतर है और यही एकमात्र सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंतर, इसका संबंध अनुभव से है। जिस किसी ने भी किया, इसका अनुभव ही किया, और अनुभव को कभी भी अभिव्यक्त नहीं किया जा सकता। अनुभव को शब्दों में बतलाया नहीं जा सकता। साधारण अनुभव भी जो होते हैं, उनको भी शब्दों में हम बतला नहीं सकते। खट्टा, मीठा, कड़वा, ये स्वाद हैं, इनको बोलकर नहीं कोई भी बतला सकता। इनको तो स्वयं जबान से चखकर ही कोई जान सकता है। जो ही हम शब्दों के माध्यम से इसे बतलाने लगेंगे, उसी समय परा विद्या अपरा में बदल जाएगी। अपरा में व्याख्याएं हैं, विधियां हैं, ढंग। जो कोई भी मोक्षकामी है, जो ईमानदारी से ब्रह्म विद्या का अनुभव चाहते हैं, उनके लिए ये आवश्यक है कि अपने संकल्प को, जिसे हम हर रोज दोहराते हैं, केवल पढ़ते हैं, जैसे ओम भद्रम कर्णे भी श्रुण्याम देव, ये एक संकल्प है। जिस दिन भी आप ये प्रण कर लेंगे कि आज मैं अपने कानों से बेकार की बात कोई नहीं सुनूंगा, आज मैं अपनी वाणी से व्यर्थ की बात कोई नहीं करूंगा, दृढ़ता से जिस दिन भी ये संकल्प हो गया कि आज सुनूंगा तो भद्र, कहूंगा तो भद्र, जो शुभ हो, सत्य हो, सत्य से संबंधित कुछ नहीं होता, सत्य ही होता है। जब आप कहेंगे कि ईश्वर से संबंधित, देखो ईश्वर से संबंधित कुछ नहीं है, उसका कोई संबंध ही नहीं है, तो वो संबंधित किससे होगा? अगर आप असंगता के शब्द को जानते हैं तो ईश्वर से कुछ भी संबंधित नहीं हो सकता। हम ये कहें मैं ईश्वर संबंधी बात करूंगा, ईश्वर से संबंधित कुछ पढ़ूंगा, तो इसका अर्थ होता है ईश्वर कोई अलग चीज है और जो मैं पढ़ रहा हूं वो कुछ अलग चीज। जैसे मैं अलग हूं और मेरे कपड़े अलग हैं, कोई ये कहे कि ये स्वामी जी से संबंधित वस्त्रों को मैं ले जा रहा हूं तो ये बात अलग है, लेकिन ईश्वर से संबंधित कुछ नहीं, ईश्वर ही है। उससे संबंधित जहां भी ये शब्द आएगा द्वैत हो जाएगा। जो इतनी सावधानी से कदम नहीं रखता उनके लिए ये विद्या नहीं। और इसका संबंध आपके अपने संकल्प से है जो आप हर रोज करते हैं, भद्रम करणे विश्रुणुयाम देवा भद्रम पश्येम अक्षुभिर्य यत्रा। इसी संकल्प को दृढ़ता से जब हम अनुभव में लाएं, अनुभव में लाएं अर्थात हम इस पर चलें, जरा सी कोई ऐसी बात कान में पड़े जिसे हम जानते हैं कि ये सब नहीं है, वहीं से अंतर्मुखी हो जाए। कानों को आप सुनने से नहीं रोक सकते, क्योंकि कान का शब्द से समवाय संबंध है। समवाय संबंध का अर्थ होता है कि शब्द कहीं भी होगा कान में पड़ेगा, क्योंकि इसका संबंध आकाश से है और आकाश सर्वाधिक सूक्ष्म तत्व है। जहां कहीं भी आकाश होगा वहां शब्द होगा, जहां कहीं शब्द होगा वो सुनाई भी देगा। इसलिए ऐसा नहीं किया जा सकता कि आप शब्दों को सुने नहीं, लेकिन आप हर शब्द को अपने सिद्धांतानुसार समझ सकते हैं, हर शब्द का अर्थ आप अपने अनुकूल कर सकते हैं। तो इसलिए ये संकल्प कि मैं शुभ सुनूं, शुभ बोलूं, जिस दिन भी हमने मन में ये विचार कर लिया कि आज से मैं शुभ ही बोलूंगा, शुभ ही सुनूंगा, और अगर 24 घंटे भी इसमें गुजार दिए हमने, जब से उठे ये संकल्प आ गया और अगले दिन जब तक उठे ये संकल्प, अगर 24 घंटे इस संकल्प में रह गए तो फिर वहीं पहुंच गए जहां पहुंच गए, फिर दोबारा कुछ करने की जरूरत नहीं रहती। लेकिन परेशानी क्या है? परेशानी यह है कि कितना भी हो बस यहां बैठकर हम इसको बोल लेंगे, मन से नहीं दोहराते, इसको बोलते हैं, रटा रटाया है, इसके कैसेट भी बने हुए हैं भद्रम करने, हम काम भी अपना करते चले जाएंगे, चलते भी जाएंगे, कुछ भी करेंगे, ये भी बोलते चले जाएंगे। तो ब्रह्म विद्या इस तरह से जीवन में चरितार्थ नहीं होती। क्योंकि इसका संबंध अनुभव से है, शब्दों से नहीं। और अनुभव तो संकल्प हैं, ये जो आप जिसको आप शांति पाठ कहते हैं, ये संकल्प मात्र है। इस विद्या के जानने वालों का या इस विद्या को जीवन में चरितार्थ करने वालों का ये एक दृढ़ संकल्प है कि मैं स्वाय शुभ के नहीं सुनूंगा, नहीं बोलूंगा, नहीं देखूंगा, नहीं दिखाऊंगा। इस संकल्प को जिस दिन बिना किसी की सलाह लिए हम पक्का अपने मन में कर लेंगे कि आज से ये होना, उस दिन समझ लो ऋषि ऋण उतारने का हमने पहला कदम उठाया। क्योंकि ऋषि ऋण, पितृ ऋण, समाज ऋण, देव ऋण, इन ऋणों से जब तक मुक्त नहीं होंगे हम मुक्ति का अनुभव नहीं कर पाएंगे, मोक्ष का अनुभव नहीं कर पाएंगे। पैदा होने के साथ ही हम ऋणी हैं, ये ऋण हमारे पर हैं, और इन ऋणों को उतारे बगैर, जैसे कोई व्यक्ति जिसके सर पर कर्जा हो, कितना भी वो देखने में सुखी लगे, कितना भी उसके पास वैभव हो, बहुत सुंदर उसके पास अपना बंगला भी हो, कार भी हो, सब कुछ हो, लेकिन जिस पर कर्जा है वो अंदर से सुखी नहीं रह सकता कभी भी। कर्जा जिसके सर पर नहीं है, उसके पास कुछ भी ना हो, तब भी सुखी। आप मजदूरों की झोंपड़ियों में देखो, जो दैनिक जीवन में मजदूरी करके अपना गुजारा कर रहे हैं, और वो शाम के समय गीत गाते हुए मिलेंगे आपको, उनकी झोंपड़ी में ढोलक बज रही है, वो हो रहा है सारा दिन मेहनत की। कर्जा कोई नहीं, किसी का लेना नहीं, जितना था उतने में संतुष्ट हैं, उतने में वो कर रहे हैं। और जहां वैभव हो लेकिन कर्जा हो, वहां रात भर नींद नहीं आती कि कल को क्या करेंगे, परसों क्या होगा। ऐसे ही हमारे पर ऋषियों का कर्जा है, देवताओं का कर्जा है, पितरों का कर्जा है, समाज का कर्जा है। अगर ये कर्जा ना होता तो जंगलों में बैठे हुए, वन में बैठे हुए ऋषि, हमारे ऋग्वेद की ये प्रार्थना है, उरिणी मे श्याम, उरिणम मे श्याम का अर्थ होता है कि मेरे पर कर्जा कोई ना रहे, मैं सारे कर्जे उतार दूं। तो वो ऋषि जो जंगलों में बैठे हुए तपस्या कर रहे हैं, वो कोई मार्केट से कर्जे लेके नहीं गए हुए, लोगों से पैसा लेके नहीं गए हुए वहां जिसको उतारने की बात कर रहे। जब वो कर्जे से मुक्त होने की बात करते हैं तो वो कर्जा यही है, ऋषि ऋण, पितृ ऋण, देव ऋण, समाज ऋण। और वो कर्जा उतरता है इस संकल्प से, अर्थात भद्रम करणे भी श्रृणुयाम, जिस दिन भी ये दृढ़ता से विचार कर लिया कि आज मैं स्वाय शुभ के कुछ नहीं सुनूंगा, स्वाय शुभ के कुछ नहीं बोलूंगा, अगर कभी कोई ऐसा दिन आ जाए सौभाग्य कि सुबह आंख खुलते ही ये संकल्प मन में उभर आए कि आज मैं केवल शुभ ही सुनूंगा, केवल शुभ ही बोलूंगा, और किसी तरह से देखो, अगर तो ये सुबह उठते पहला संकल्प आ जाए मन में, वो भी अपने आप में बहुत बड़ी बात। और अगर किसी तरह से 24 घंटे इस संकल्प में जी ही लिया, पूरा प्रयत्न करके 24 घंटे शुभ में ही रहे, सुना भी शुभ बोला भी शुभ, तो चिंतन अपने आप ही शुभ होगा, क्योंकि बिना शुभ चिंतन के शुभ बोल नहीं पाओगे और बिना शुभ बोले शुभ सुन नहीं पाओगे। अगर कभी कोई ऐसा दिन व्यतीत हो जाए एक, तो वो एक दिन ही पूरे जीवन को बदल के रख देता है। जो कर देती है सारी उम्र की तारीख को रोशन, हयाते मुक्त सर में एक घड़ी ऐसी भी आती। इस लंबे चौड़े जीवन में कुछ क्षण, कोई मोमेंट एक ऐसा आता है जो जीवन को बदल के रख देता है। वो चाहे हम महर्षि वाल्मीकि के जीवन की कथा को लें, या संत तुलसी की कथा को लें, या हम ध्रुव की कथा को लें, एक ही शब्द से जीवन बदल गया। ऐसे ही जिस दिन ये संकल्प, जिसको हम रोज पढ़ते, जिस दिन भी ये बात मन में समा गई, बाकी सब कुछ स्वयं सुस्पष्ट हो जाए, क्योंकि फिर कुछ और करने की, जब भगवान गीता में ये कहते हैं ना कि न ही ज्ञानेन सदृशं पवित्रम इह विद्यते, ज्ञान से बढ़ के पवित्र और कुछ नहीं है, और समय आने पर योग संसिद्धिम, अगर आपने के संकल्प में दृढ़ता है तो समय आने पर वो अपने आप ही आपका रास्ता प्रशस्त कर देता है। और जहां कहीं भी ज्ञान शब्द आएगा, वेदांत की दृष्टि से ज्ञान का अर्थ है अनुभव। कभी भी ज्ञान का अर्थ शब्दों को रटना या बोलना नहीं, अनुभव किस चीज का, इसी बात का। अगर ये इशारा हुआ ऋषियों की ओर से कि भद्रम करणे विश्रुण्या, और हमने ये संकल्प कर लिया कि आज से भद्र ही सुनूंगा, आज से ना सही आज का दिन भद्र में ही व्यतीत करूंगा, इतना भी अगर आ जाए, इसमें यह नहीं है कि आज से लेकर हमेशा आगे चलता रहूं, एक दिन भी अगर हम ऐसा करके देख लें, तो वो ज्ञान शब्द के जो अर्थ हैं वो चरितार्थ हो। ज्ञान का मतलब अनुभव, ज्ञान का मतलब यहां, क्योंकि ज्ञान को ही अपने इन वेदांत के ग्रंथों में ज्ञान स्वरूप भी कहा जाएगा और उसको प्रकाश स्वरूप भी कहते हैं। प्रकाश रोशनी को ही कहते हैं, और प्रकाश का अनुभव ही होता है, ये कोई शब्द नहीं है कि इसको हम प्रकाश प्रकाश कहें तो अंधेरे से बाहर निकलेंगे। प्रकाश का अर्थ ही अनुभव है प्रकाश का। अगर प्रकाश का अनुभव नहीं है तो प्रकाश नाम का कोई शब्द नहीं। ऐसे ही जब हम ज्ञान शब्द का प्रयोग करते हैं तो ज्ञान का अर्थ है अनुभव। अनुभव किसका? अंतम स्थिति में तो अनुभव ये किसी अन्य का नहीं है, अनुभव इसको अपना ही अनुभव कहते हैं। अपना का मतलब आत्मा, आत्मा शब्द का अर्थ अपना होता है। इसलिए ब्रह्म विद्या के लिए, क्योंकि ब्रह्म विद्या इसमें जितने भी शब्द आते हैं, बीच बीच में कभी भी जैसे अदृश्य अग्राह्य विभु नित्य सर्वगत, ऐसे ऐसे शब्द हैं जो हमने पढ़े उसके लिए, आप लोग क्योंकि खूब आपकी रुचि है, इन सब शब्दों को आप श्रीमद् भगवत गीता के 10वें अध्याय में देखें। ये जो यहां हम कह रहे हैं ना, ये पढ़ते हैं हम, नित्यम विभुम सर्वगतम सुसूक्ष्म, वहां गीता के 10वें अध्याय में भगवान कृष्ण कहते हैं मैं नित्य हूं, मैं विभु, वो ये उनकी विभूतियां। आप यहां का एक शब्द विभूति योग के 5 श्लोक उसकी व्याख्या करें, यहां 4 शब्दों में सारी बात कहके समाप्त हो गए, वहां वो 72-74 विभूतियां गनवा देंगे। और विभूतियां गनवाने के बाद फिर ये नहीं कहते कि ये इतनी ही हैं, वो कहते हैं ये तो कुछ मैंने उद्देश्य पूर्वक तेरे से बात कही है, बाकी जितने तू चाहे गिनता चला जा। ये अनएंडिंग एंड, कभी खत्म ना होने वाली एक लिस्ट है, क्योंकि कोई चीज ऐसी है ही नहीं जो भगवान की विभूति ना हो, स्वयं भगवान ना, इसलिए वो कभी खत्म। और भगवान का मतलब भी अनुभव ही है, भगवान का मतलब कोई दूसरी चीज नहीं है किसी को उस रूप से जानना। अगर भगवान स्वयं ये बात कह रहे हैं कि अहम आत्मा गुड़ाकेश सर्वभूताशय स्थित, अगर वो स्वयं कह रहे हैं कि मैं आत्मा के रूप में हर एक में स्थित हूं, तो फिर उसे बाहर कहां ढूंढ। इसका अर्थ तो ये हुआ, ना हमने शास्त्र की बात मानी, ना हमने गुरु की बात मानी, और ना ही ईश्वर की बात मानी। ईश्वर अपने आप कह रहा है कि मैं आत्मा के रूप में हूं। विद्याओं में मैं ब्रह्म विद्या हूं, यह भी उसी में आपको मिल जाएगा विभूति योग में। तो ब्रह्म वो जब कहता है कि विद्याओं में मैं ब्रह्म विद्या हूं, तो इसका अर्थ किसी पढ़ाई लिखाई से नहीं। ईश्वर के बारे में क्या पढ़ना, ईश्वर से संबंधित अगर आप कुछ पढ़ते हैं, तो इसका अर्थ हुआ कि ईश्वर कोई अलग चीज है, उसके संबंध में कोई जानकारी दूसरी चीज, वही द्वैत आ जाएगा। ईश्वर से संबंधित कुछ नहीं होता, क्योंकि ईश्वर ही सब कुछ है, तो फिर उससे संबंधित क्या होगा। अगर इन शब्दों को आप ठीक से सोचें, तो काफी हम उस अनुभव के नजदीक पहुंच सकते हैं जिसका प्रयत्न उपनिषदों के माध्यम से ऋषियों ने हमें करने के लिए कहा कि ऐसा प्रयत्न करो। तो जब स्वयं कृष्ण कह रहे हैं कि मैं ब्रह्म विद्याओं में ब्रह्म विद्या हूं, तो फिर पढ़े क्या। इसका अर्थ तो ये हुआ कि ब्रह्म विद्या से उसका कहना भी जो ही हम कहेंगे तो वो अलग हो जाती है बात। जब आत्मा के रूप में ही है तो आत्मानुभव इस कहेंगे। आत्म अनुभव करने के लिए, आत्म अनुभव करने के लिए ब्रह्म विद्या को जीवन में चरितार्थ करने के लिए, ईश्वर की अनुभूति के लिए क्या किया जाए, तो एक ही बात है, भद्रम करणे भी श्रृणुयाम। ये संकल्प कि हमने ये संकल्प कर लिया दृढ़ता से कि आज स्वाय शुभ के ना कुछ सुनूंगा ना कुछ कहूंगा। और अगर दृढ़ता से ये बात पूरी कर ली कभी, तो ब्रह्म विद्या की प्रतिज्ञा पूरी हो गई। और अगर हम ये नहीं कर पाए, तो फिर जितना मर्जी इसको पढ़ें जो करें, औपचारिकताएं हैं, इसको काल क्षेप कहते, समय पूरा होगा लेकिन वो अनुभव नहीं होगा। अनुभव के लिए पहला कदम और आखिरी कदम दोनों एक हैं, क्योंकि ईश्वर में ये नहीं होता कि ईश्वर का पहले पांव दिखलाई देगा फिर उसका सिर दिखलाई देगा। जहां समग्रता होती है, जो कुछ है वो पूरा ही। ईश्वर के सिर में और ईश्वर के पैर में अंतर नहीं होता, क्योंकि वो शुद्ध चेतन है और चेतन में कभी टुकड़े नहीं होते, विभाजन नहीं होता। कुछ साधना में कुछ भी करो, चेतन में विभाजन नहीं देख पाओगे। मलाल हो भी तो लब आशना नहीं होता, मलाल हो भी तो लब आशना नहीं होता, जहां दिलों में कोई फासला नहीं होता। मेरा चिराग अलग है, तेरा चिराग अलग, मगर उजाला तो कभी जुदा नहीं होता। दीपक अलग हो सकता है आपके हाथ में और मेरे में, लेकिन रोशनी अलग नहीं होगी कि ये तेरे वाले दीपक की रोशनी और ये मेरे वाले। अगर थोड़ा सा भी इस बात को आप समझ सको तो फिर हम तत्व की ओर अग्रसर हो सकते। इसका संबंध दीपकों से नहीं, दीपक जितने हैं सबके एक एक के हाथ में पांच पांच भी हो सकते हैं। दीपक अपरा विद्या के प्रतीक हैं, वो अपरा है, विभिन्नता है, अनेकता। उन दीपकों की शक्ल, दीपक अलग अलग शक्ल के हो सकते, उनके रंग अलग अलग हो सकते। कोई एक बत्ती वाला, कोई दो बत्ती वाला, कोई पांच बत्ती वाले दीपक भी होते हैं, चौमुखे दीपक भी। लेकिन उन सब दीपक कितने भी करो, रोशनी को अलग नहीं कर पाओगे। दीपकों को अलग करेंगे हम, ये मेरा, ये तेरा, ये उसका। आप भी दीपक जलाओ, मैंने भी जलाया, लेकिन दोनों की रोशनी में कहां पर विभाजक रेखा होगी? वहां पर लाइन ऑफ डिमार्केशन कहां खींचोगे कि ये तेरा अपने दीपक की रोशनी अलग कर? चेतन जिसको हम कहते हैं, तत्व जिसको हम कहते हैं, कृष्ण जिसको हम कहते हैं, वो उस रोशनी का नाम है, उस चेतन का नाम। बाकी सब बातें उसको समझाने की, समझ में वो नहीं आएगा कभी भी, क्योंकि उसका संबंध समझ से है ही नहीं। जिसको हम समझ कहते हैं, इसके पीछे भी उसी की सत्ता। समझ या बुद्धि उसी की सत्ता से सोचती है, अगर वो पीछे ना हो तो बुद्धि सोच नहीं पाए। इसलिए बुद्धि लौटकर उसे नहीं देख सकती, बुद्धि बाहर आगे को देखेगी।